الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبهذا العلم. تو یہ جو آیات 51 سے 58 تک تو ان کی تلاوت پچھلی کلاس میں کی گئی تھی, تو ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ جو لوگ اس تلاوت کو سن رہی تھیں پچھلی کلاس میں, تو اس میں جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے, تو اس کے اوپر امید ہے کہ آپ نے سجدہ تلاوت کر لیا ہوگا. کسی کو اگر یاد نہیں رہا ہو تو وہ اب کر لیں یا اپنے پاس کوئی نوٹ کر لیں, کیونکہ کلاس کے شروع میں بات ہوئی تھی, پھر ایک گھنٹے کے بعد پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو ذہن سے یہ بات نکل سکتی ہے. اچھا, تو ان آیات کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا, خلاصہ تفسیر بھی اور عارف مسائل شروع کر لیے تھے. اس میں ہم پیج نمبر 40 پر اس ٹاپک پر تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں, تو ان کو اس طرح سے کیوں فرمایا نا کہ انہ کان صادق الوعدی, کہ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے, وکان رسول النبی, اور وہ رسول تھے نبی تھے. تو کیا ہر نبی وعدے کا سچا نہیں ہوتا؟ صرف اسماعیل علیہ السلام تھے تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ہر نبی وعدے کا سچا ہوتا ہے, لیکن کسی کو کوئی خاص صفت ہوتی ہے, کسی خاص واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, جو کہ دوسروں کو اس واقعے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ یہ واقعہ صرف انہی کی زندگی میں ہوا تھا. تو اس وجہ سے نا اس کی جو خاص صفت ہوتی ہے اس کو الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت عام اسلوب ہے کہ کسی کی خصوصی بات, یعنی اس کسی چیز کسی کو اگر کسی بات کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے تو اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے, اگرچہ کہ اس بات سے دوسرے لوگوں کو بھی ایک عمومی نسبت حاصل تھی ہی. ٹھیک ہے, تو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے جب باپ سے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے, تو انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا اور بالکل کبھی یعنی ایک آنچ بھی نہیں آنے دی اس وعدے کے اوپر کہ میں ذبح کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی تھا, یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان کے لیے صادق الوعد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اور دوسری وجہ ایک اور بھی بیان کری ہے کہ ایک شخص سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا, تو ایک سال تک اس کا انتظار کرتے رہے. اچھا, اس کے آگے چلتے ہیں کہ ایفا وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ. ایفا کہتے ہیں پورا کرنے کو, اوفا یوفی ایفا ان, تو ایفا عہد یعنی عہد کو پورا کرنا, اور عہد کے لیے ہی وعدے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ایفا وعدہ انبیاء و صلحاء کا وصف خاص اور تمام شریف انسانوں کی عادت ہے. شریف انسان سے مراد کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی یہ عادت ہے کہ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بلا وجہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اس کے خلاف کرنا فساق فجار اور رذیل لوگوں کی خصلت ہے. فساق کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھل کر کے گناہ کرنے والے ہوں, یعنی گناہ بھی کرتے ہوں اور دکھاتے بھی ہوں لوگوں کو کہ وہ گناہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو مرد داڑھی منڈاتا ہے یعنی شیو کرتا ہے, ٹھیک ہے, شریعت کا حکم کیا ہے کہ جو چہرے کے بال ہیں مرد ان کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, ایک مشت سے اس کو کم نہیں کاٹیں, ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو پھر کاٹنے کی اجازت ہے لیکن اس سے کم کی اجازت نہیں ہے. اس سے کم میں کیا حکم ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, اس کو شیو نہ کریں. اب ایک مرد جو ہے وہ داڑھی کو شیو کرتا ہے, تو یہ جو داڑھی کو شیو کر رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے, صحیح ہے نا, لیکن ये जो गुनाह कर रहा है ये अपने चेहरे के ऊपर इस गुनाह का इजहार कर रहा है, क्योंकि चेहरे को तो मर्द तो नहीं छुपाते ना, मर्द को तो नहीं नकाब करना होता ना, तो हर इंसान उस मर्द के चेहरे को देखेगा कि वो दाढ़ी को शेव करता है। तो इस वजह से दाढ़ी शेव करना ये फिस्क में आता है, फिस्क में यानी गुनाह कर भी रहा है और पूरी दुनिया को दिखा भी रहा है। और एक होता है कि आप छुप करके गुनाह कर रहे हैं, ठीक है, गुनाह को जो है वो आप यानी उसका उसका इश्तिहार नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो फजर फिजर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ऐसा करने वाले को फाजिर कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुनाह करता हो लेकिन वैसा ना हो जैसा कि फासिक होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गुनाह करने वाले को भी फाजिर और उसकी जमा फुजार। तो फुसाक, फुजार और रजील लोग, यानी रजील से मुराद जो जो जलील बहुत ही निचले टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही औबाश और यानी क्या कहते हैं उनको, आवारा किस्म के जो लोग होते हैं उनके लिए रजील का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उन लोगों की खसलत है कि उनको अपने वादे का कोई 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 ख्याल ही नहीं होता, कोई पास ही नहीं होता। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अलइदतु दैनुन, इदतु वादा यईदु इदतन, यानी वादा करने के लिए जो जो रूट वर्ड्स अरबी में इस्तेमाल होता है ना वो होता है इदा, इदातुन, ठीक है। तो नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अलइदतु यानी वादा दैन है, दैन कहते हैं कर्ज को, ठीक है, यानी जिस तरह कर्ज की अदायगी इंसान पर लाजिम है इसी तरह वादा पूरा करने का एहतमाम भी लाजिम है, ठीक है। कर्ज क्या होता है? कर्ज के लिए उर्दू में बोझ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि ये आपके ऊपर एक बोझ है, एक एक यानी बार आपने अपने ऊपर उठाया हुआ है, और इस बोझ को जो है वो उतारना जरूरी होता है, वरना इंसान इस बोझ के साथ चल फिर नहीं सकता, काम काज नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक हैवी लोड उठा करके आप अपने घर में काम काज तो नहीं कर सकते या बाहर तो नहीं जा सकते ना, तो उस लोड को उतारेंगे तब ये काम कर, तब अपने नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं ना। तो कर्ज भी एक बोझ होता है, इसी वजह से बगैर यानी शरी जरूरत तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन यानी एक 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 जेन्युइन नीड जिसको कहते हैं ना, एक एक वाकई आपको एक जरूरत है किसी चीज की, तो उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेना जायज है, ठीक है ना। कर्ज लेना कोई हराम चीज नहीं है, हराम बात नहीं है, लेकिन कर्ज चूंकि एक बोझ के तौर पर इंसान के ऊपर लद जाता है और इस बोझ की वजह से उसके नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है ना वो मुतासिर हो जाती है, इस वजह से कर्ज जो है वो पसंद नहीं किया गया कि आप जो है वो लेफ्ट एंड राइट जो है वो कर्ज लेते रहे, कोई भी चीज, कोई भी जरूरत पड़े, कोई भी आपको, बल्कि जरूरत तो क्या, कोई भी ख्वाहिश पड़े उसके लिए कर्ज उठा के ले लें। अपनी नाक कटने का लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल होता है कि नाक कट जाएगी, कि अगर हम किसी के घर गए और हमने खूब सारे तोहफे ना दिए तो हमारी नाक कट जाएगी, उनकी नाक जो भी होती है पता नहीं कोई धागे की तरह की चीज होती है ना, खड़बक कटती रहती है, तो इस वजह से ना फिर वो अब ये भारी भरकम गिफ्ट तो उनको ले जाना जो है वो उनकी कोई खानदानी रिवायत बनी हुई होती है, तो अब वो पैसे नहीं है तो कर्जा ले करके, है ना, अब वो उसको पता नहीं क्या दीन का हिस्सा समझते हैं, क्या समझते हैं, हालांकि कर्ज लेना जो है वो दीन के अंदर ही पसंदीदा चीज नहीं है बिला जरूरत, ठीक है। तो भाई आप कोई तोहफा ले जाना है, ठीक है, आप कोई हल्का सा तोहफा ले जाएं, कोई मामूली तोहफा ले जाएं जो कि यानी जिसमें आपको बहुत ज्यादा खर्चा ना करना हो, जैसे तोहफा दो अगर कोई बकरी का खुरी क्यों ना हो, नहीं नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी का जो 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 तुमने अपने घर के अंदर बकरी ज़बह करी है, उसका जो तुमने खाना बनाया है, तो उसका अगर पैर का जो खुर होता है ना, जिसको कि सबसे ज्यादा मामूली चीज समझी जाती है और हम लोग तो इस्तेमाल भी नहीं करते, उसको फेंक देते हैं, राइट, तो ऐसी भी चीज अगर तुम तोहफा दे सको तो इससे भी तोहफा दे दो, ठीक है। तो मतलब ये कि तोहफे के लिए जो है वो कर्ज लेने की कोई कोई तुक नहीं बनती बेसिकली, ठीक है, बस बंदे जो है वो अपने ऊपर बोझ उठा रहे होते हैं, तो अब वो बोझ जो होता है वो दुनिया में भी उनको मुतासर करता है, और अगर कर्ज उतारे बगैर दुनिया से चले गए तो फिर क्या होगा भाई, ऐसे शख्स की तो जो कर्ज के साथ दुनिया से चला जाता था, नबी अलैहिस्सलाम सलाम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे, नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि मौजूद हैं اور مسلمان بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ منافق ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے، مسلمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہیں پر، تو کتنی بڑی محرومی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کسی اور سے کہہ دیا نہیں یہ ہے تو مسلمان تو تم پڑھ دو اس کی نماز جنازہ، میں نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے کو تھوڑی کہ قرض کوئی معمولی چیز ہے جس کی وجہ سے کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ، تو اسی طریقے سے جس طرح قرض کے انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے جب وہ وعدہ کر لیتا ہے نا کسی سے تو وہ بھی بوجھ بن جاتا ہے، اس وجہ سے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے، اسی طریقے سے بلا ضرورت لوگوں سے وعدہ بھی نہیں کرتے پھرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی اس کی بھی عادت ہوتی ہے ہر وقت وعدہ، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں گا میں یہ کر لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کر لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کو وعدہ کرنا کوئی معمولی بات ہے، آپ اپنے اوپر بوجھ اٹھا رہے ہیں اتنا بڑا، ٹھیک ہے؟ تو بلا ضرورت وعدے بھی نہیں کرنے چاہیے، ہاں بھی کوئی آپ ایسی بات کر لیں کہ جس کے اندر کوئی کمٹمنٹ نہ آتی ہو، ہر وقت کمٹ تو نہیں کر لینا چاہیے۔ تو العیدہ تو دین، وعدہ ایک قرض ہے، یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہے اسی طرح وعدہ پورا کرنے کا اہتمام بھی لازم ہے۔ دوسری ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، وعی المؤمنی واجبن، یعنی وعدہ مومن کا واجب ہے۔ ایک منٹ، تو مومن کا وعدہ واجب ہے۔ اچھا، اب واجب کا جو لفظ ہم نے پڑھ لیا تو اب ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ اچھا جس طرح وتر واجب ہے، وتر کی نماز واجب ہے اور دوسرے واجب چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے قرض بھی اسی، یعنی اس کا بھی اسی طرح سے حساب دیا جائے گا۔ تو اس کو حضرت نے پھر یہاں پہ ایکسپلین کر دیا کہ حضرات فقہا نے، فقہا کون ہوتے ہیں کہ جو کہ بات کی گہرائی تک جاتے ہیں، ہے نا، ان کو تفصیلی علوم حاصل ہوتے ہیں اور ان کی نیت بھی خالص ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں مل جائیں، نیت کا خالص ہونا اور تفصیلی علوم کا حاصل ہونا، تو پھر بندہ فقی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فقی کی جمع فقہا، تو فقہا حضرات جیسے امام شافعی، مالک، حنبل، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہم، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، بھائی یہ سارے ان سارے جو ہیں وہ فقہا ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی فقہا موجود ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے مشائخ ہیں، ذکی عثمانی صاحب ہیں اور اس طرح کے بہت سارے اور ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو بھی آج کے دور کا فقی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرات فقہا نے باتفاق یہ فرمایا ہے کہ وعدے کا قرض ہونا اور ایفائے وعدہ کا واجب ہونا اس معنی میں ہے کہ بلا عذر شرعی اس کو پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ عذر شرعی کیا مطلب؟ کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا تھا کہ جی میں آ جاؤں گا جمعے کے دن آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اب سیلاب آ گیا اور راستے بند ہو گئے، ٹھیک ہے، اب آپ جا ہی نہیں سکتے، ایسا معاملہ ہو گیا، تو یہ جو اس قسم کا عذر پیدا ہو گیا یہ شرعی عذر ہے، کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، فلائٹس بند ہو گئیں، آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا جی میں آ جاؤں گا اگلے مہینے تک، میں واپس آ جاؤں گا جاب کے اوپر، پتا چلا جی کورونا لاک ڈاؤن ہو گیا، ہے نا، یہ انہوں نے فلائٹس ہی بند کر دی، تو اب آپ نے جو وعدہ کیا تھا تو یہ شرعی عذر ہو گیا، اب آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو شرعی عذر ہے نا اگر ہو گیا تو پھر تو گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر شرعی عذر نہیں تھا اور بس ایسی سستی کاہری یا ٹیکنگ اٹ لائٹلی، کوئی بات نہیں، وعدہ ہمارے ایک انکل تھے آج سے کوئی 15-20 سال پرانے، پہلی بات ہے کہ شکاگو میں رہتے تھے تو وہاں پر ایک پاکستانی انکل تھے، بڑی مزے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے، تو مزے سے کہتے تھے، یعنی وہ کرتے نہیں تھے اس طریقے سے لیکن وہ باتیں کرتے تھے اس طرح کی کہ وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے، وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا کر لیا جائے، ہے نا، تو یہ ان کے اقوال میں سے ایک قول بھی تھا، اور وہ واقعی پاکستانی قوم بلکہ انڈین بھی شامل ہی کریں ان کے اندر، تو ہم لوگوں کا بھی یہی زندگی کے نصب العین میں سے ایک نصب العین یہ بھی ہے کہ وعدہ کرو اور توڑو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو خیر بلا عذر شرعی اس کو پورا نہ کرنا گناہ، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ یہ فقیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ گناہ کا مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ڈارک چاکلیٹ کھا لی تو ذرا کڑوی تھی، ہے نا، جیسے وائٹ چاکلیٹ بڑی میٹھی ہوتی ہے اور براؤن چاکلیٹ جو ہے وہ اس سے کم میٹھی ہوتی ہے، तो डार्क चॉकलेट जो होती है ब्लैक चॉकलेट वो बड़ी कड़वी होती है, तो उसी तरीके से वादा भी जो वो गुनाह भी जो है वो ऐसी है, चॉकलेट काली है ना। नहीं, गुनाह जो होता है ना वो थोड़ा सा कड़वा बादाम नहीं होता, बल्कि गुनाह का मतलब होता है पिटाई, सजा। ठीक है, अब वो सजा मिलेगी चाहे दुनिया में मिले, आखिरत में मिले, या दोनों जगह मिले, ठीक है ना। ये तो हर सूरत मिलनी है, जब भी इंसान गुनाह कर लेता है। तो वादे को बिला शरीक पूरा ना करना ये गुनाह है, लेकिन वो ऐसा कर्ज नहीं है कि जिसकी चारा जोई अदालत से की जा सके और जबरदस्ती वसूल किया जा सके। इसको फुकहा के इस्तेलाह में यूं ताबीर किया जाता है कि ये दयानतन वाजिब है, अवाअन वाजिब नहीं है। ठीक है, दयानतन का मतलब क्या होता है? दयानतन हर उस मामले को कहते हैं जो कि बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है। ठीक है, बंदे और अल्लाह के दरमियान है, दयानतन है, और अल्लाह ताला ही को हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला ही अपने फरिश्तों से कह करके इसके नामे अमाल के अंदर गुनाह लिखवा लेते हैं जब ये गुनाह करता है तो। ठीक है, लेकिन दुनिया में इसकी चारा जोई, कानूनी चारा जोई ये नहीं होती, इसको दयानतन कहते हैं। और कवान का मतलब कि जिस चीज को काजी की अदालत में बाकायदा पेश किया जा सके। ठीक है ना, तो इसके लिए जो वादा काजी की अदालत में पेश किया जा सके ना, वो वादा वो होता है कि जो कि आप हलफन उठा लें, हलफन हलफ उठा करके, यानी कि मैं किताब के ऊपर हलफ, कुरान के ऊपर हलफ उठाता हूं, और गवाह, और हलफन का मतलब ये होता है जिसमें गवाह भी मौजूद है। ठीक है, तो अब वो गवाह आपने रख लिया ना, दुनियावी तौर पर इंसान आपने गवाह रख ली, अब जो है वो बंदा कोर्ट में जा सकता है, काजी के पास जा सकता है और गवाहों को साथ लेकर के जाएगा कि जी इस शख्स ने इन गवाहों के सामने मुझसे हलफ उठाया था कि वो ये काम करेगा, और अब वो मुकर गया है, अब वो नहीं कर रहा ये काम। अब जो गवाह होंगे वो काजी साहब के सामने गवाही भी देंगे। आजकल इसको अटेस्टेशन करना भी कहते हैं, या स्टैम्प पेपर के ऊपर आप कोई चीज लिख लें तो वो भी एक वादा होता है। स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने लिख लिया और उसके ऊपर फिर वो मोहर लगवा ली किसी क्या कहते हैं उसको, ऑफिसर से, 21 ग्रेड का ऑफिसर स्टैम्प लगा देता है उसके ऊपर। ठीक है, अब वो जो डॉक्यूमेंट है ना उसको आप कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं कि हाँ जी फलाने शख्स ने मुझसे वादा किया था और उस वादे के ऊपर सिग्नेचर किए थे, और देखें अटेस्ट करवाया था इसको, अब उसने वादा पूरा नहीं किया, वो तो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जुबानी वादा जब किसी के साथ करते हैं तो ये कवान वाजिब नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है, तो दयानतन तो वाजिब होता है। ठीक है, किसी को कोई इस बात समझ में ना आ रही हो तो आप पूछिए। अच्छा, मुस्लिह का फर्ज है कि इस्लाह का काम अपने अहलो आयाल से शुरू करे, मुस्लिह इस्लाह करने वाला। ठीक है, तो अपने घर से शुरू करें, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ठीक है, अंग्रेजी का मुहावरा भी है कि आप नेकी का काम करें, लोगों को सबका खैरात देना, ये आप अपने घर से शुरू करें। और सबसे अच्छा सदका, हदीस से भी पता लगता है कि सबसे अच्छा सदका वो है जो कि अपने अहलो आयाल के ऊपर खर्च किया जाए। ठीक है, काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के खुसूसी औसाफ में एक ये भी बयान फरमाया कि वो अपने अहलो आयाल को नमाज और जकात का हुक्म देते थे, है ना। इन आयात के अंदर उनका जिस तरह से भी जिक्र आया, हुक्म देते थे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये काम तो हर मोमिन मुसलमान के जिम्मे वाजिब है कि अपने अहलो आयाल को नेक कामों की हिदायत करता रहे, तो ये वाजिब है कि अपने अहलो आयाल को, यानी जो उसके आयाल हैं, जो उसके उसकी रईयत है, उनको नेक कामों की हिदायत करना ये ऊपर वाले के ऊपर वाजिब है। ठीक है, और यहाँ पर वाजिब से मुराद ये नहीं कि जी फर्ज की, इशा की 4 रकात फर्ज हैं और 3 वितर जो है वो वाजिब है, नहीं। यहाँ पर वाजिब का मतलब फर्ज, बिकॉज ये वो नमाज की रकतों की बात नहीं हो रही वहां पर, वो यानी उन इबादात के अंदर ना फर्ज एक अलग मानी में लिया जाता है और वाजिब एक अलग मानी में लिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी मामलात के अंदर जब लफ्ज लफ्ज वाजिब इस्तेमाल होता है तो ये फर्ज ही के मानी में होता है। ठीक है, ये कोई लेस देन फर्ज चीज नहीं है। ठीक है, तो हर मोमिन मुसलमान की जिम्मे वाजिब है कि अपने अहल वयाल को नेक कामों की हिदायत करता रहे, चाहे जिसको हिदायत कर रहा है, नसीहत कर रहा है, उसको अच्छी लगे या बुरी लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हिदायत करने का अंदाज अच्छा हो, अकल इस्तेमाल करे, मौका महल के हिसाब से करे, वो अलग बात है, लेकिन करना तो है। ये नहीं है कि इस्लाम तो एक पर्सनल रिलीजन है ना, हर एक का जाती मामला है ये, है ना। तो मेरी बीवी का जाती मामला है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, पर्दा करती है नहीं करती है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, झूठ बोलती है नहीं बोलती है, उसका जाती फेल है, वो अल्लाह को खुद ही जवाब देगी। जी नहीं, वो जाती फेल तो उसका है, जवाब तो वो देगी, लेकिन आपका भी जाती फेल है, ठीक है। शौहर साहब का भी ये जाती फेल ही है, इसलिए कि शौहर साहब से भी पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, आपने मना किया, आपने समझाया, आपने कोई असबाब इख्तियार किए कि बीवी की भी कुछ तरबियत हो जाए, बीवी की भी कोई तालीम मिल जाए उसको भी, ठीक है ना। आपने किया कि नहीं किया सब कुछ, ठीक है। अगर नहीं किया तो आपकी भी पिटाई होगी, बीवी की तो होगी, यानी कि बीवी बच जाएगी, उसकी तो होगी, लेकिन शौहर की भी होगी, ठीक है ना। अब शौहर ने करना है, चाहे बेगम साहिबा हो जाए, नाक चढ़ाएं या फूं चढ़ाएं या कुछ भी करें, ठीक है। आजकल तो जाहिर है, मैं उससे समझू हूँ दुश्मन जो मुझे समझाए हैं, जो समझाता है उसी को दुश्मन समझना, और बीवी को समझाना तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इस वक्त, ठीक है। कि जी तुम्हारी तुम्हारी बहन तो पढ़ती नहीं, तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तुम्हारी तो भांजी ऐसी है, तो तुम्हारी भतीजी ऐसी है, और तुम मुझे समझाने आ रहे हो, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी तो बीवी होती है, क्या मतलब बीवी बीवी होती है, बीवी जिम्मेदारी भी होती है, बेशक बीवी के अपने हुकूक और बीवी का अपना मुकाम एक अलग चीज है, हर एक का अलग अपना अपना मुकाम है, माँ का अलग मुकाम है, बहन का अलग मुकाम है, और दूसरों का अलग मुकाम है, बीवी का अलग मुकाम है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने जो चीज फर्ज करी है, जिसका हिसाब अल्लाह को देना है, तो उसके आगे आप ये नहीं कह सकती कि जी मैं तो बीवी हूँ तो मुझे मेरे सामने तुम चुप रहो, नहीं, ठीक है ना। ठीक है, चुप रहो, वो रह जाएगा चुप, अगर आप इस तरीके से करेंगी तो वो चुप हो जाएगा, लेकिन आप ही छुटकारा नहीं होगा आपका। अल्लाह से डरना चाहिए, मरना याद रखना चाहिए, मरने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अल्लाह के रसूल जो कह के चले गए थे ना, उसके साथ तुमने क्या किया। तो वाजिब है हर मुसलमान किसी के ऊपर कि वो अपने अहल वयाल को नेक कामों की हिदायत करता रहे। पुराने हकीम में आम मुसलमानों को खिताब है, कू अनफुसकुम, ठीक है, व अहलीकुम नारा, ठीक है, बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को आग से, दोनों का हुक्म है। यानी कि पहले अपने आप को बचाओ और उसके बाद जब अपने आप को बचा लो फिर उसके बाद अहल वयाल की बात करना, दोनों को साथ साथ बचाओ, ठीक है ना। कॉन्कैटिनेशन, वाव जो है वो मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दिस एंड दैट, दोनों काम तुमने साथ करने हैं। पहले जन्नत का टिकट खरीद लो, फिर उसके बाद बेगम साहिबों को टिकट दिलवाना, नहीं, जन्नत का टिकट तो तुम्हें मरते तक मिलेगा नहीं, है ना। जब मर जाओगे, जब आएंगे फरिश्ते, तो उस वक्त पता चलेगा अच्छा जन्नत में जा रहे हो, जहन्नम में जा रहे हो, तो क्या दुनिया में फिर कुछ नहीं करना, बेगम साहिबा को फारिग, मरने के बाद तो बेगम साहिबा को नसीहत करेंगे, जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा फिर बेगम साहिबा को नसीहत करेंगे, औलाद को नसीहत करेंगे, क्योंकि हाँ जी अब मुझे पता चल गया कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इंसान अपने ऊपर मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन साथ साथ उसने दूसरे काम भी करने होते हैं, क्यों, इसलिए कि नेक बनने में ये शामिल है कि वो दूसरों को भी नसीहत करो। नेक बनने का मतलब ये नहीं होता आपने मुसल्ला बिछाया, वुजू किया और दे धनाधन नफिल पढ़ना शुरू हो गए, ठीक है, ये नेकी मुकम्मल नेकी नहीं, ये अधूरी नेकी नहीं, ठीक है। मुकम्मल नेकी उस वक्त होगी जब आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने लगाई हैं वो काम भी पूरी कर रहे हैं, और उन जिम्मेदारियों में अहलो अयाल को आग से बचाना शामिल है। हमारा जो निज़ाम है आजकल काफिरों के हाथों में जो पूरा का पूरा आया हुआ है, तालीमी निज़ाम हो या मीडिया का निज़ाम हो या सोच का निज़ाम हो, जो भी हो, तो उसके मुताबिक क्या है कि अपने काम से काम रखो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह का निज़ाम तो ये नहीं है ना, ठीक है। अल्लाह का निजाम तो यह है कू अनफुसकुम, ये अल्लाह की किताब की आयत यहाँ पे कोट हो रही है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये अल्लाह का निजाम है। तो फिर इसमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खसूसियत क्या है कि वो जो है वो अपने रोयाल को कहा करते थे। तो अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बात यह है कि ये हुक्म अगरचे आम है और सभी मुसलमान इसके मुकल्लफ हैं, मुकल्लफ का मतलब होता है कि जिम्मेदारी डाली गई है किसी के ऊपर, तकलीफ तकलीफ किसी के ऊपर डाल दी गई हो ना तो उसको कहते हैं मुकल्लफ, ठीक है। तो हर इंसान हर मुसलमान इसका मुकल्लफ है, शौहर बीवी बच्चों का मुकल्लफ है और बीवी बच्चों की मुकल्लफ अपनी जात के बाद, ठीक है, अपनी जात के साथ साथ। तो लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसके एहतमाम व इंतजाम में इम्तियाजी कोशिश फरमाते थे, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये खुसूसी हिदायत मिली थी कि व अंजर अशीरतकल अक्रबीन, के डराइए आप अपने अशीरा, अशीरा कहते हैं अपने खानदान वालों को, वल अक्रबीन और करीबी रिश्तेदारों को, यानी वाइडर फैमिली को भी डराइए और करीबी रिश्तेदारियों को, रिश्तेदारों को यहाँ पर खास करके बयान करते हैं। क्यों? अशीरा के अंदर करीबी रिश्तेदार नहीं आ जाते, आ जाते हैं, ठीक है ना, अशीरा के अंदर करीबी रिश्तेदार भी आ जाते हैं, दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। तो फिर बात वही है कि फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा वर्ड जो है वह ऐसे ही नहीं खामखा में अल्लाह ताला इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इस सुपर सेट, अशीरा सुपर सेट है, उसके अंदर जो सब सेट है, अक्रबीन सबसे करीबी जो है बीवी, जो तुम्हारे साथ लिबास की तरह है, राइट, तुम्हारी औलाद जो कि तुम्हारे अपने घर के अंदर रहते हैं, MBBS याद है ना, MBBS बताया था, MBBS होती है असल चीज, अकरब MBBS को कहते हैं, मैट्रिक बार बार नहीं बल्कि मियां बीवी बच्चों समेत ये होते हैं अक्रबीन, ठीक है। तो अक्रबीन को और भी ज्यादा उनकी फिक्र करो दूसरों के मुकाबले में, खाला फुप्पो मामू चचा उनके मुकाबले में अपने बीवी बच्चों की फिक्र और भी ज्यादा करो, ठीक है, उनको और भी ज्यादा, अच्छा है क्या, डराओ, डराओ का क्या मतलब भाई, भाऊ करते रहो और वक्त उनको, राइट, नहीं, डराओ का मतलब क्या कि अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर हमसे छुट गई तो हम क्या करेंगे फिर उसके बाद, अगर अल्लाह हमसे नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा, ये डराना नहीं होता, ये भी तो डराना ही होता है, डराने का मतलब जो है वो डंडा लेकर के मारूंगा ऐसे करके, अगर तुमने ये नहीं किया तो डंडा मारूंगा, ये डराना होता है खाली, ठीक है भाई, अल्लाह की मोहब्बत ये भी डराना होता है, राइट, मोहब्बत में कमी हो जाएगी, कबूलियत में कमी हो जाएगी, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं, है ना, देखें हम जो खाने खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें बादशाहों की तरह से रखा हुआ है ना, अपनी सवारी है, जहां चाहते हैं चले जाते हैं, है ना, खाना है, जाओ जो चाहते हैं खाते हैं, जो चाहते हैं पीते हैं, देखो हमारे फ्रिज के अंदर इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, देखो हमारे घर के अंदर एयर कंडीशन मौजूद है, गर्मियां होती हैं तो एसी चला के रखते हैं, सारा सारा दिन एसी चला करके रखते हैं, है? पाकिस्तान में लाइट चली जाती है लेकिन सऊदी अरब में तो लाइट नहीं जाती अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, और फिर सर्दी आती है तो फिर हीटर चला करके रखते हैं, और है ना, ये नेमतें अल्लाह ताला की ना, तो ये नेमतें अल्लाह ने दी है ना हमको, अल्लाह ताला को पैसे तो नहीं दे करके आए थे ना, पेमेंट तो नहीं करके आए थे ना नेमतों की, तो अगर हम अल्लाह ताला को नाराज कर देंगे तो व्हाट इफ अल्लाह ताला डिसाइड्स टू टेक देम अवे फ्रॉम मी फ्रॉम अस, अल्लाह ताला हमसे अगर इन नेमतों में से एक नेमत भी वापस छीन ले तो फिर हम क्या करेंगे, ये डराना नहीं है, ये भी तो डराना ही है ना, ठीक है ना, नेमत के छिन जाने का खौफ, सूए खात्मा का खौफ, राइट, ये भी तो डराना ही है ना। तो अंजर अशीरतकल अक्रबीन, ठीक है, तो नबी अलैहि सलाम को ये खुसूसी हिदायत मिली थी, यानी अपने खानदान के करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामील में अपने खानदान को जमा करके खुसूसी खिताब फरमाया, यानी एक तो वो इंसिडेंट हुआ कि पूरे खानदान को जमा किया, और फिर उसके बाद इंडिविजुअली और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर कभी फुप्पियों को जाके डरा रहे हैं, राइट, फुप्पियां, 6 फुप्पियां थी और फुप्पियों से जाकर के बात किया करते थे, ठीक है। और कभी जो है वो अपनी बेटी फातिमा, तुम इसके ऊपर तवक्कुल करके ना बैठ जाना कि तुम जो है अल्लाह के नबी की बेटी हो, नहीं फातिमा तुम्हें खुद अमल करना होगा अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो इंडिविजुअली स्मॉल ग्रुप्स कैसे भी बन पड़ता था नबी रसूल ये बात करते रहते थे, इसको कहते हैं पैशन। किसी चीज का पैशन होता है ना तो इंसान को बस सुबह शाम उसी की लगी होती है, ठीक है। तो नबी अलैहि सलाम को पैशन था कि अल्लाह के बंदे जहन्नम की आग से बच जाए। आज अल्लाह ताला में भी ये पैशन अता फरमा, मांगना चाहिए अल्लाह ताला से। तो आगे फरमाया कि दूसरी बात यहाँ काबिल गौर ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम सब के सब पूरी कौम की हिदायत के लिए मबूस होते हैं और वो सभी को पैगाम हक पहुंचाते और अम्र इलाही का पाबंद करते हैं। अहलो अयाल की खसूसियत में क्या हिकमत है? अच्छा, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी क्या खसूसियत थी? नबी अलैहिस्सलाम को तो ये वाकया आ गया ना कि सबको जमा किया और उनको डराया, ठीक है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की खसूसियत में फिर वो वाला एक वाकया याद आता है कि सीरत की क्लास में भी आपने शायद सुना हो, बच्चों की जो क्लास होती है, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, नहीं वो तो खैर है, वैसे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसकी नस्बत बनती है ज्यादा, लेकिन वो था ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो मकाम करामा तशरीफ लाए और उस वक्त तक इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी, तो दरवाजा खटखटाया अपने बेटे के घर का, तो अंदर से जो है वो बहू निकली। तो अब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहचानती नहीं थी क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो शाम चले जाते थे और बड़े बड़े अरसे के बाद वापस आते थे। फिर तो पूछा कि जी इस्माइल से मिलना है, उन्होंने कहा जी वो तो गए हुए शिकार खेलने के लिए, यानी शिकार करने के लिए गए, क्योंकि उस जमाने में जाहिर शिकार करते थे फिर ला करके उसको तो काट के पकाते थे। तो गए हुए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या हाल चाल चल रहे हैं, घर के अहवाल वगैरह कैसे हैं? तो बहू साहिबा ने जो है ना वो बड़ा मुश्किल हालात हैं जी, खाने को नहीं मिलता और बड़ा ये है बड़ा वो है, इस तरह की सारी बातें करें ना, शिकायती बिल्कुल अंदाज में जवाब दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अच्छा मैं तो अभी जा रहा हूँ, तो जब आपके शौहर आए ना तो उनको कहिएगा कि अपने दरवाजे की चौखट को बदल लीजिए, ठीक है। तो उनको तो समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है इसका। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने बता दिया कि जी वो एक आए थे बुजुर्ग और उन्होंने इस तरह से कहा है कि अपनी दरवाजे की चौखट को बदल लेना। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप की बात समझ गए और बहुत ही जहीन और यानी मिजाज शनास थे अपने वालिद के, है ना, कुर्बानी के लिए पेश किया था 14 साल की उम्र में, तो कोई मामूली बात तो नहीं थी ना, तो समझ गए कि बाप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन बेगम साहिबा को तो फारिग कर दिया, ठीक है, कि आप तो जाएं जी तलाक, सही है। फिर उसके बाद दूसरी शादी करी और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए, फिर इसी तरह का वाकया हुआ। तो अब जो बीवी थी उन्होंने बहुत अच्छे से, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत बहुत अल्लाह का करम है, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुए और जब उनको कह के गए कि वो जब आए ना तो उनसे कहना कि अपनी दरवाजे की चौखट को बरकरार रखो, ठीक है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो अपने घर वालों की, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो नसीहतें होती थी ना, गाइडलाइंस होती थी, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इस चीज को इतनी अहमियत देते थे कि बर्दाश्त नहीं किया इसको अपने घर के अंदर के, फारिग कर दिया, ठीक है। घर वालों की इस्लाह की अहमियत थी इनकी निगाह में एक्सेप्शनल, ठीक है। तो इसी वजह से तो बेगम साहिबा को फारिग कर दिया ना, वरना तो ठीक है ठीक है, मैं समझा लूंगा ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। और अल्लाह के नबी थे तो नबियों के स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हमारे वाले से, हमारे साथ तो यही होगा कि हमें तो समझाना ही होगा, हमको थोड़ी इस तरीके से कि अच्छा अब्बू ने कह दिया तो अब तो तलाक दे दी, बेगम साहिबा को घर भेज दिया उठा करके। आजकल तो ये मामला नहीं होता ना, हम तो अल्लाह के नबी नहीं है ना, और हमारे तो फिर हमारे तो वालिद भी इब्राहिम तो नहीं है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। लेकिन नबियों के स्टैंडर्ड्स तो अल्लाह ताला ने सबसे हाई बनाए होते हैं, तो इस वजह से वहां पर है ये चीज बिल्कुल उनके शान के मुनासिब होती है। हमारी शान ही कोई नहीं है तो उसके मुनासिब ये हरकतें भी, ये अमाल जो है वो हमारे मुनासिब ही नहीं है या हम उनके मुनासिब ही नहीं है। बहरहाल तो ये दूसरी बात हमने पढ़ ली, अच्छा अच्छा, तो आप कहते हैं कि जी बात यह है, यानी क्यों खास लोयाल का ख्याल करने की क्यों क्यों बात हुई? तो बात यह है कि दावत पैगंबराना के खास उसूल हैं, उनमें ये अहम बात है कि जो हिदायत आम खल्कुल्लाह को दी जाए उसको पहले अपने घर से शुरू करें। अपने घर वालों को उसका मानना और मनवाना निस्बतन आसान भी होता है, निस्बतन आसान होता है, अच्छे वक्तों में होता था, पता नहीं आजकल के दौर के अंदर तो जरा मुश्किल ही लगता है। लेकिन उसकी भी वजह है कि आजकल के दौर में घर वालों को मनवाना और मनाना ज्यादा मुश्किल इसलिए भी होता है ना, क्योंकि एक तो ये कि जी जो घर वाले लेकर के आते हैं वो बगैर तरबियत के उठा के लेकर के आ जाते हैं। जब शादी कर रहे होते हैं तो उस वक्त दीन देख के तो शादी नहीं करते, उस वक्त तो खूबसूरती देख के शादी करता है कोई, कोई जो है वो डिग्री देख करके शादी करता है, कोई जो है वो जॉब देख करके शादी करता है, कोई जो है वो कुछ और चीज देख करके शादी करता है ना। तो उस वक्त तो आपको दीन याद नहीं आता, बाद में फिर उनको दीन सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो जाहिर है फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जो खातून आई हुई होती हैं घर में, तो वो तो किसी ने मजमून लिखा हुआ आप लोगों के साथ, जरा अभी शेयर करने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेयर भी कर लेंगे। तो उस जिसने भी वो मजमून लिखा है तो लिखा है कि जी एक सर्टन एज जब औरत के ऊपर गुजर जाती है ना, तो फिर वो लड़की जो है ना वो बहू कम और सास ज्यादा बन जाती है, ठीक है, यानी वो ऐसी उसके मिजाज बन जाता है कॉलेज पढ़ पढ़ करके, यूनिवर्सिटी पढ़ पढ़ करके, कि वो फिर वो कुछ और ही बन जाती है। अब वो जब आएगी तो फिर उसके बाद उसने क्या करना है, आदतें पुख्ता हो जाती है ना। आप फिर आप होता है, हर बंदे का अपनी एक स्पेस होती है, ठीक है, जब इंसान कम उम्र होता है ना तो उसकी स्पेस जो होती है वो इतनी पुख्ता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो फिर जैसे होते हैं ना आदतें पुख्ता हो जाती हैं वक्त के साथ, उसी तरीके से ना इंसान की अपनी एक एक स्पेस बन जाती है, अपना एक एक दायरा बन जाता है इंसान का, ठीक है ना। और अगर वो इंडिविजुअलिस्टिक जिंदगी गुजार रहा है, इनफिरादी जिंदगी गुजार रहा है ना, जैसे कि अपना कमरा, अपनी चीज, अपना ये, अपना वो, अपना तकिया है ना, मेरा अपना हर चीज मेरी अपनी, ठीक है ना, तो जैसे जैसे वो पुख्ता होता जाएगा ना, तो वो अब अपनी चीजों में दूसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान, ठीक है ना। ये मर्दों के साथ भी होता है, सॉरी तो औरतों के साथ भी होता है, ठीक है, कि वो स्पेस इतनी पुख्ता हो जाती है कि अब यू कैन नॉट स्टैंड एनीवन इंटरफेयरिंग इन योर स्पेस, इन योर लाइफ, राइट, इन योर डिसीशंस, आप फिर अब बर्दाश्त नहीं कर सकते आप किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। और शादी, शादी तो कॉम्प्रोमाइज का नाम है, शादी में तो आप जो है वो है ना वो यानी लिबास बन जाते हैं एक दूसरे के। लिबास क्या होता है, चिपका हुआ होता है ना, यानी दो बंदे आकर के चिपक गए लिबास की तरीके से एक दूसरे ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मैं तो नहीं कह रहा ये बात, लिबासुल्लकुम, ये तो एक दूसरे के लिबास हैं, यानी अब तो शादी होने के बाद तो तुम चिपक जाओगे एक दूसरे से, है ना। अब वो स्पेस जिसने अपनी बनाई हुई हो तो अब वो किसी को चिपकने की इजाजत देगा अपने से, लिबास बनने की इजाजत देगा अपने अपने साथ, ठीक है। और हमारा जो जो सिस्टम है हुजरात वगैरह को तो हम समझते ही नहीं है कुछ कोई चीज, हमारा तो सिस्टम ये है कि मर्द खाली नहीं चिपकता, उसका पूरा का पूरा खानदान आके चिपक जाता है ना। तो अब जिसका मिजाज ऐसा बना हुआ हो कि वो तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तो उसने कहाँ बर्दाश्त करनी है सारी चीज ना। तो फिर अब माशाल्लाह हर घर के अंदर से धुआं उठ रहा होता है, फिर आजकल आग लगी हुई है, धुएं उठ रहे हैं, और धुआं भी क्या उठ रहा होता है, धुआं उठने का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया देखती है, फिर क्योंकि धुएं को आप छुपा नहीं सकते, घर में बंद नहीं कर सकते, राइट। आग तो फिर चलो घर में बंद होगी, लेकिन आग का धुआं तो बाहर निकलेगा ना चिमनी के जरिए से, तो सारी दुनिया देखती है, फिर तमाशे हो रहे होते हैं, चीख पुकार और पड़ोसियों को आवाजें जा रही होती हैं, और कभी तो है वो भाग करके पड़ोस में ही पनाह लेनी पड़ती है फिर उसके बाद। तो ये हो रहा है हमारे घरों के अंदर आजकल, तो इसकी वजूहात है ना इन सब चीजों की, ऐसी तो नहीं खामा खा के अंदर टीवी चल रही होती है, टीवी के अंदर ड्रामे देख रहे होते हैं जिसके अंदर इस किस्म का मिजाज बना रहे होते हैं कि जिसमें आप जिस मिजाज बनने के बाद आप किसी को बर्दाश्त ना कर सकें। तो टीवी से तो हमने तौबा करनी नहीं है, ईमान की टीवी उससे तो हमने तौबा नहीं करनी, ठीक है ना। फिर उसके बाद और हमारे मिजाज बनाने के और भी बहुत सारे जरिए मौजूद हैं, तो अब उसके बाद तो आग लगेगी और धुआं उठेगा, तो वही हो रहा है तकरीबन हर जगह पर। जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं ना, यानी टीवी ना हो और इस किस्म का एजुकेशन सिस्टम ना हो और इस किस्म का जो है वो आपका मिजाज बिल्डिंग एक्टिविटीज ना हो, तो फिर अपने घर वालों को मनाना और मनवाना आसान होता है। ठीक है, ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी हो गई। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई जो मनाने और मनवाने साहब वाले, जो माने जो जो साहब हैं, जो मनवाना चाहते हैं मनाना चाहते हैं, तो वो भी अगर कुछ कुछ तमीज की जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो लोग उनकी बात मान लें आसानी के साथ ना। ठीक है, यानी तमीज की जिंदगी क्या होती है, जो आपके ऊपर हैं आप उनकी मानना शुरू कर दें। ठीक है, जब आप अपने ऊपर वालों की मानना शुरू कर देते हैं, ऊपर कौन होता है भाई, मर्द के ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारें। राइट, अल्लाह की मानने का मतलब फराइज आप पूरे करें, फराइज ये अल्लाह की मानना होता है। नबी अलैहिस्सलाम की मानने का मतलब कि सुन्नतें, आप जाहिरी सुन्नतें, बातिनी सुन्नतें, और जो अपने रोजमर्रा के मामलात के अंदर जो हम ब्लंडर्स करते हैं, तो इनको अवॉइड करने के लिए क्या करना होता है, इनको अवॉइड करने के लिए किसी के साथ इस्लाही ताल्लुक होना चाहिए, जिसको शेख कहते हैं। ठीक है ना, तो शेख के साथ जब इस्लाही ताल्लुक होता है तो फिर ये जो हमारे डे टू डे ब्लंडर्स होते हैं, उन डे टू डे ब्लंडर्स से भी हम बच सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम उनकी तालीमात को गौर से सुने, उनसे अच्छे से बात करें, उनसे पूछें, राय हदायत दें, है ना, तो फिर हम इस तरह के ब्लंडर से, तो ये होते हैं ऊपर वाले। तो मर्द जब ऊपर वालों की मान के चलता है, उनसे पूछ के चलता है, तो फिर नीचे वालों के लिए भी उसकी मानना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मॉडल दिया अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी के लिए हमें, उस मॉडल को हम अपना मॉडल बना लें, कोशिश करना शुरू कर दें इसके ऊपर, तो फिर घरों के अंदर ना आग लगेगी और ना धुआं उठेगा। तो अपने घर वालों को उसका मानना और मनवाना निस्बतन आसान भी होता है, उसकी निगरानी भी हर वक्त की जा सकती है, और वो यानी आप देख सकते हैं कि भाई आपने जो समझाई थी बात उस पर अमल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाहर वालों को तो आपने समझाया तो अब वो पता नहीं अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको तो नहीं नजर आ रहा ना। तो आप निगरानी भी कर, निगरानी का मतलब भी वही नहीं कि जिस तरह से वो चौकीदार निगरानी करता है, बल्कि निगरानी का मतलब ये है कि यू कैन कीप एन आई, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो इसको निगरानी कहा है आपको। और वो जब किसी खास रंग को इख्तियार कर लें और इसमें पुख्ता हो जाएं, तो इससे एक दीनी माहौल पैदा होकर दावत को आम करने और दूसरों की इस्लाह करने में बड़ी कुव्वत पैदा हो जाए। ठीक है, जब आपके घर वाले, आपकी बीवी, आपके बच्चे, वो भी मानना शुरू हो जाए दीन की बातों को, तो फिर वो एक आपके घर का एक माहौल पैदा हो जाता है, इसको दीनी माहौल कहते हैं। ठीक है, और इस माहौल से जो है ना, फिर यानी ये एक सिनर्जी कहलाती है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिनर्जी, एनर्जी नहीं, सिनर्जी। ये सिनर्जी क्या होती है, ये सिनर्जी होती है कि व्हेन एवरीवन टेक्स एनर्जी फ्रॉम एवरीवन एल्स, हर एक फर्द उस घराने का दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है ना, शोहर बीवी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बीवी शोहर को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, माँ बाप बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये घर के अंदर एक सिनर्जी बन जाती है, ये होता है दीन का मोहर। ठीक है ना, अब ये जो घर है, ये तो इसको कहते हैं बुकाए नूर, नूर का बुका बन गया ये ना, नहीं? अब इससे जो है वो नूर फूटेगा और सब इससे फायदा उठाएंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम का घराना था, और जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं ना, हर घराना ऐसा बन जाता है। आज 21वीं सदी के अंदर, फितने दज्जाल के दौर के अंदर भी ऐसे घराने मौजूद हैं, लेकिन वो सुन्नतों पे अमल करने की वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली पॉसिबल, बल्कि बहुत आसान है। एकल हमारी बेटी साहिबा छोटी, 8 साल 9 साल वाली जो है, तो वो पूछ रही थी अब ये मुस्तकीम क्या होता है, मुस्तकीम क्या चीज होती है। मैंने उनको बताया कि आपने पढ़ा है ना, हिदेना सिराफ मुस्तकीम, तो मुस्तकीम उस रास्ते को कहते हैं कि जो कि सबसे सीधा और सबसे आसान रास्ता होता है। मुस्तकीम सबसे आसान रास्ता होता है। फिर उसको मिसाल से समझाया कि जब हम जाते हैं उम्रे पे, जाते हैं जो गाड़ी पे अगर सफर करके जाते हैं ना, तो आपने देखा ना हाईवे पे हम जा रहे होते हैं, ठीक है, हाईवे जो होती है वो एक तो सीधी होती है, ठीक है, सीधी से मुराद ये नहीं कि कभी उसमें कर्व नहीं आ सकता, यानी बिल्कुल क्लियर होती है वो कि भाई हाँ कहाँ जाना है आपने, ठीक है, और उस हाईवे के ऊपर गड्ढे नहीं होते, गढ़े नहीं होते, राइट, उस हाईवे के ऊपर जो है वो रुकावटें नहीं होती, बिल्कुल आसानी से आप हाईवे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन हाईवे के राइट और लेफ्ट पे क्या होता है, मिट्टी, रेत, पानी, और यानी गड़े, सब कुछ होता है उस रास्ते के अलावा। जो आपको चीजें नजर आ, जो रास्ते नजर आते हैं, जो मतलब साइड साइड पे जो चीजें होती है, वहां पे आप अपनी गाड़ी को अगर उतार लें तो आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकेगी, है ना, कितना मुश्किल होगी उस रास्ते के ऊपर चलाना, ना पगडंडी भी जिसको कहते हैं हम उर्दू के अंदर, तो पगडंडियों के ऊपर चलाना तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना, ठीक है। तो सिरातुल मुस्तकीम जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सीधा रास्ता है, ये अल्लाह तक पहुंचता है, नहीं, बल्कि ये सबसे आसान रास्ता है, ये सबसे सुकून वाला रास्ता है, इत्मीनान वाला रास्ता है ये, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान चीज है, ठीक है, इस 21वीं सदी के एक भाई थे, उन्होंने अभी पिछले दिनों मैसेज किया, उनके बड़े मसले चल रहे हैं, घरेलू वगैरह इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो पूछने लगे कि जी ऐसा ऐसा हो गया है हमारी फैमिली के अंदर, तो अब तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, यानी सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो गई। तो सारे ने उनको जवाब दिया कि मोमिन की जिंदगी में पेचीदगी नहीं होती, मोमिन की जो जिंदगी होती है ना ईमान वाले की जिंदगी में, उसमें पेचीदगी नहीं हो सकती, क्योंकि मोमिन का मामला क्या है, नंबर वन झूठ बोलना उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो झूठ बोले, झूठ बोलने का ऑप्शन ही नहीं है, किसी दूसरे की मिल्कियत के ऊपर कब्जा करना इसका वो तस्वुर ही नहीं कर सकता, किसी दूसरे की जो उसका जो माल है या उसका जो 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 उसके उसके सामान है उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाए, क्योंकि उसको तो हर वक्त ये खौफ लगा होता है कि एक बालिश बराबर भी चीज पे कब्जा कर लिया तो 7 तौक जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा, वो 7 तौक जमीन का जो वजन होता है, कितना वजन होता होगा, जब फरमाया कि एक बालिश जमीन भी किसी ने दूसरे की ले ली तो इतना उसको अजाब होगा, ठीक है। तो ये जो 7 तौक धसा देने का जो जो खौफ होता है ना, तो मोमिन तो तस्वर ही नहीं कर सकता किसी दूसरे के चीज के ऊपर कब्जा करना, ठीक है, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को जो है वो अजियत देना, ये इसकी जिंदगी का उसूल, ये इसकी जिंदगी में मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी दूसरे को जानबूझ करके अजियत दे, तकलीफ पहुंचाए, ठीक है। और चौथी बात कि अगर कोई दूसरा उसके ऊपर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तो जायज हद तक तो वो मुकाबला करता है, लेकिन जो उसके लिए मुमकिन नहीं है मुकाबला करना, तो उस मामले को अल्लाह के हवाले कर देता है ना, वहुवा यतवल्ला सालिहीन, और अल्लाह ताला सालिहीन का मुतवल्ली होता है, मददगार होता है ना भाई। तो इससे ज्यादा आसान चीज क्या है, इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज क्या है, झूठ वो बोल नहीं सकता, दूसरे की चीज पे कब्जा कर नहीं सकता, किसी को तकलीफ पहुंचा नहीं सकता, ठीक है, और अगर कोई दूसरा उसके ऊपर तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह के हवाले, ठीक है ना। तो इसकी जिंदगी में पेचीदगी कैसी, इसको तो पता है कि इसने करना क्या है और क्या नहीं करना है, पेचीदगी तो उस वक्त होती है जब समझ में ना आ रहा हो कि मैं करूं क्या, आगे का रास्ता ही जो है वो क्लियर ना हो कि अच्छा उधर जाना है कि उधर जाना है, अच्छा सच बोलना है या झूठ बोलना है, अच्छा धोखा देना है या नहीं देना है, कब्जा करना है या नहीं करना है, या छोड़ देना है, खुसूसन तलाक वगैरह के जो मामला होते हैं तो उसके अंदर होता है ना कि जी अच्छा उसकी उसकी प्रॉपर्टी है, वो उधर से क्लेम हो रहा है, यहाँ इधर से क्लेम हो रहा है कि ये उसकी है ये उसकी है, भाई आपको पता नहीं है किसकी है ना, आपकी है तो आपकी है, आप रखिए अपने पास, उसकी है तो उसकी है वो, अब आपने उसको हदिया दे दिया है तो वो उसकी हो गई, अब वो उसको लेकर के जहां भी जाए, आप कौन होते हैं उसके ऊपर जो है वो कहने वाले कि नहीं, हमारे घर से कहीं नहीं जाएगी, भाई आपकी है तो कहीं नहीं जाएगी ना, वो तो अगर किसी और की है तो जाएगी वो, राइट। तो
पेचीदगी तो हुई थी, यानी मोमिन की जिंदगी में कहां से पेचीदगी आ गई? ये तो सरात मुस्तकीम के ऊपर होता है, ये तो आसान तरीन रास्ते के ऊपर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है इसकी जिंदगी का मामला। ठीक है, तो क्या है हमारे साथ मसला कि हम अपने जानते हुए अपनी जिंदगी को पेचीदा बनाते हैं, जानबूझ करके जो है अपने जिंदगी में मुश्किलात लेकर के आ रहे हो, है ना। ईमान वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो जन्नत का केक तो जन्नत में जाकर के मिलेगा, उस केक की आइसिंग यानी इत्मीनान वो तो इस दुनिया में मिल जाएगा। ठीक है, क्या घाटे का सौदा है, मुश्किल है इसके अंदर। इसके लिए तो अल्लाह वाले जब भी तो फरमाया करते थे कि बादशाहों को अगर पता चल जाए कि हमारे दिलों में कितना इत्मीनान है, बादशाहों को अगर पता चल जाए कि हमारे दिलों में कितना इत्मीनान है तो वो अपनी फौजें लेकर के हमारे ऊपर चढ़ दौड़े इस इत्मीनान को हासिल करने के लिए, है ना। क्योंकि बादशाहों के दिलों में इत्मीनान कहाँ होता है, दुनिया वालों के दिलों में कहाँ इत्मीनान होता है, तो अल्लाह वालों के दिलों में होता है ना। ठीक है, तो बस अल्लाह वाले बन जाए, अपने परवरदिगार के बन जाए, सारा मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास खत्म करते हैं। वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.